जीवन अपना हो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन अपना हो संकल्प विमल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, आत्म परिवर्तन करें विश्व परिवर्तन कर दे।
भ्राता हेमेंद्र मेहता, स्वागत हो ब्रदर एवी स्वामीनाथन जी, ललिता enhancing quality for transformation. अब तक जो मायने समझ लिए गए वो केवल materialistic थे. Quality management का जमाना जरूर है. हर field में quality improve करने पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जहां तक मैं समझती हूँ. वो कुछ बिजनेस ट्रेंड्स हैं, क्वालिटी बढ़ाओ, ज्यादा धन कमाओ वगैरह, प्रोग्रेस के नाम पर स्ट्रेस और टेंशन खरीदते जा रहे हैं और उसको क्वालिटी मैनेजमेंट का नाम दिया जा रहा है, जिसको हम कह सकते हैं इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं. इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में है अंधेरे और सड़कों पर उजाले हैं. अंदर का अंधकार बढ़ता जा रहा है और बाहर की चकमक बढ़ती जा रही है. इससे संतुष्ट कोई भी नहीं है, इसलिए अब जरूरत है कुछ रोल मॉडल्स की, कुछ ऐसे जीवंत उदाहरणों की जिन्होंने अपने जीवन को सच में निखारा हो, अपना कैरेक्टर इम्प्रूव किया हो, एक जलती मशाल बने हो. कुछ करके दिखाने वाले लोगों की जरूरत है, जिन्होंने प्रोग्रेस के नाम पर बाहरी कैरियर मान मर्तबा भी कमाया हो और आंतरिक संतुष्टि भी एक गहरी नींव के साथ चल रहे हों, रेत की दीवार पर नहीं, जिसको हम रियल लीडर्स कहते हैं. कहते हैं कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, वक्त जिधर बहा ले गया बहते गए. कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए. वक्त को मीनिंग देने वाली महान हस्तियां इस विद्यालय में इतनी है जो गिनी नहीं जा सकती, और उन्हीं में से एक महान हस्ती आज हमारे बीच है, ब्रदर एवी स्वामीनाथन. आप प्रोफेशन से इंजीनियर हैं और मैनेजमेंट ट्रेनर हैं और वंडरफुल. मानव सेवा का इतना जज्बा है कि आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया है. पिछले 2 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारीज के बंबई निहित सेवा स्थान पर ही रह करके बाहर के जगत में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए ताली जरूर बजाएं. मुझे चश्मा लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए. वैसे तो आपका बायोडाटा बहुत लंबा है, एक अखबार निकल सकता है, फिर भी मैं छोटे में पढ़ती हूँ. आप प्रोफेशन से इंजीनियर हैं और प्रेजेंट टाइम सीनियर कंसल्टेंट हैं विद लॉयंस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड न्यू बॉम्बे में, और पिछले 12 वर्षों से आप इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की विद्या का अध्ययन करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके बहुत प्यारे और एक्सपर्टाइज वाले टॉपिक्स हैं मेमोरी मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव थिंकिंग, वर्ल्ड ऑफ स्माइल, डाइल्यूटिंग स्ट्रेस, जर्नी विद हार्मनी, लिविंग लाइफ लविंगली, माइंड मैनेजमेंट। और जिन जिन इंस्टीट्यूट्स में आपने सेवा की है, बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन कुछ के नाम पढ़ती हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, वर्क हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कुछ कॉरपोरेट एरियाज में आपने सेवाएं दी हैं, H&R जॉनसन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और बार्क, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स कंपनी लिमिटेड वगैरह वगैरह, और बहुत लंबी लिस्ट है। बाकी आपके प्रवचन से हमें आपकी आंतरिक पर्सनैलिटी का भी दर्शन होगा। एनहांसिंग क्वालिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रदर स्वामीनाथन जी।
ओम शांति, गुड इवनिंग, नमस्कार। ऑनरेबल चेयरपर्सन एवं मेरे प्रिय मित्र श्री हेमेंद्र मेहता जी, आदरणीय अनीता दीदी जी एवं सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इट्स अ ग्रेट प्लेजर प्रिविलेज टू बी इन द एडमिस्ट ऑफ सच वंडरफुल इंटेलेक्चुअल्स टुडे इवनिंग। और आज विशेष तौर पर हम एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे, एंड द टॉपिक इज एनहांसिंग क्वालिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अभी तैयार हैं? यस और नो? ग्रेट। हेलो। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेन कीवर्ड है और वो है द शब्द क्वालिटी। स्टार्ट करता हूं मैं क्वालिटी के साथ। वैसे बहुत सारे देश हैं, वो सारे देशों में एक देश है विच इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट्स क्वालिटी कॉन्शियसनेस, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कौन सा देश है? माय गॉड, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, राइट आंसर, जापान। तो हम जापान के साथ स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या हुआ, एक बार एक जापानीज टूरिस्ट केम टू इंडिया फॉर साइट सीइंग। सारा भारत देखा, ऑन द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी ही केम टू मुंबई फॉर मुंबई दर्शन। मुंबई दर्शन करने से विशेष तौर पर वे इंप्रेस्ड हुए विद द स्टैमिना ऑफ मुंबई पीपल। लोकल ट्रेन के वो धक्के खाते हुए उन्होंने देखा तो काफी इंप्रेस हुए, है ना। आफ्टर सम डेज ऑफ मुंबई दर्शन ही वांटेड टू गो बैक टू जापान। तो उन्होंने एक टैक्सी बुलाई और टैक्सी में बैठे और टैक्सी ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी, प्लीज टेक मी टू द एयरपोर्ट। तो हमारे टैक्सी ड्राइवर कौन थे? वेरी एंथुजियास्टिक सरदार जी ड्राइवर, और वो टैक्सी चलाने लगे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक होंडा कार बहुत स्पीड से आई, टैक्सी को ओवरटेक करके निकल गई। द जापानीज टूरिस्ट वॉज वेरी एक्साइटेड, ही पॉप्ड हिज हेड आउट ऑफ द विंडो एंड सेड, होंडा वेरी फास्ट, व्हाट अ गुड क्वालिटी, मेड इन जापान। तो हमारे सरदार जी ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल रिएक्ट नहीं किए, वेरी कूल, काम, कंपोज्ड। कुछ समय के बाद क्या हुआ, मित्सुबिशी गाड़ी बहुत स्पीड से आई, टैक्सी को ओवरटेक करके निकल गई। As usual, the Japanese tourist was very excited. उन्होंने अपना सर विंडो के बाहर निकाला और कहा, Mitsubishi, very fast, what a good quality, made in Japan. हमारे सरदार जी ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, but very cool, calm. कुछ समय के बाद एक Toyota car बहुत स्पीड से आई, टैक्सी को ओवरटेक करके निकल गई। As usual, the statement made by the Japanese tourist was, Toyota, very fast, what a good quality, made in Japan. और ये सिलसिला चलता रहा, हमारे सरदार जी ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बट वेरी कूल, काम, रिलैक्स्ड। कुछ समय के बाद जब टैक्सी एयरपोर्ट पर पहुंची तो जापानीज टूरिस्ट उतरे और हमारे सरदार जी ड्राइवर भी उतरे। तो जापानीज टूरिस्ट ने पूछा, टेल मी व्हाट इज द फेयर, कितना भाड़ा हुआ? तो ड्राइवर साहब ने कहा, 10,000 Indian rupees, 10,000 रुपए। तो जापानीज टूरिस्ट, 10,000, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो हमारे वेरी इंटेलिजेंट सरदार जी ड्राइवर ने क्या किया, अपना हाथ मीटर पर रखा और कहा मीटर वेरी फास्ट, व्हाट अ गुड क्वालिटी, मेड इन इंडिया। यस फ्रेंड्स, वी आर स्पीकिंग अबाउट क्वालिटी। और विशेष तौर पर ये मुझे जोक इसलिए याद आया क्योंकि कल मैं जब दादी जानकी जी को सुन रहा था तो दादी जानकी जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि भाई जीवन है तो बहुत मुस्कुराओ और बहुत हंसो। और मैं आपको खुशखबरी देता हूं फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक दो बातों पर टैक्स नहीं लगाई है, एक तो मुस्कुराने पर और दूसरे तालियां बजाने पर। तो फ्रेंड्स, बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकम्स इंटेलिजेंट, हम जितना चाहें उतना मुस्कुराएं और जितना खुशी का अनुभव हम इजहार कर सकते हैं। वैसे कहते हैं जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ। कहा जाता है देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। लेकिन फ्रेंड्स हम तो कहते हैं सदैव मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी, आसान है जिंदगी। तो शाम के समय पर मैं आपको हंसते हंसते एक बहुत सुंदर एक जर्नी में लेकर जाता हूं जहां पर विशेष तौर पर ये फोकस करेंगे क्वालिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं फ्रेंड्स, यस ब्रदर, कहते हैं क्वालिटी इज रिमेंबर्ड फॉर एवर, है ना। करीब 10-15 वर्ष पहले अगर हमको कोई प्रोडक्ट खरीदनी थी तो फ्रेंड्स हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं थे, एक दो ब्रांड मिलती थी वो हम खरीदते थे। लेकिन अगर हमको वो ब्रांड बहुत अच्छी लगती थी तो हम क्या करते थे, सभी को बताते थे। लेकिन आज के जमाने में हमारे पास बैंडविड्थ ऑफ चॉइसेस हैं। इसे आज की इस वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में अगर हमें एक्सेल करना है तो यस वी हैव टू बी क्वालिटी कॉन्शियस, क्योंकि क्वालिटी इज रिमेंबर्ड फॉर एवर। यस ब्रदर, कहते हैं टोटल क्वालिटी इंप्लाइज नथिंग इग्नोर्ड, हर एक डिपार्टमेंट शुड बी क्वालिटी कॉन्शियस। इसको हम द कंसेप्ट ऑफ TQM विच स्टार्टेड इन जापान, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। विल ए फोस्टर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं जब वो कहते हैं क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ हाई इंटेंशन, सिंसियर एफर्ट, इंटेलिजेंट डायरेक्शन एंड स्किलफुल एग्जीक्यूशन। ठीक है, या नाउ क्लिक करिए ब्रदर, क्वालिटी बिगिंस विद द सेल्फ। देखिए फ्रेंड, सोचने की बात यह है कि वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस। हम जहां पे भी जाते हैं हम ये फोकस करते हैं कि मुझे किस प्रकार की सर्विस मिल रही है। लेकिन आज जो हमारी यात्रा होगी, वी विल चेक द क्वालिटी ऑफ आवर ओन लाइफ, हमारी जीवन की क्वालिटी क्या है। और अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे है तो उसे हमें चेक करना है और उसे हमें चेंज करना है, बिकॉज क्वालिटी बिगिंस विद द सेल्फ। कहते हैं फ्रेंड्स, नाउ व्हाट डू यू मीन दैट पर्सनालिटी, दो शब्द से बना है, पर्सन प्लस एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। मतलब थ्रू क्वालिटी आई हैव टू चेक ऑन माय ओन पर्सनालिटी। वैसे देखा जाए तो वैसे रस्ते में बहुत सारे लोग चलकर जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति रस्सी पर चलता है ना तो लोग उनको देखने लगते हैं, क्योंकि एक वो कला है, दैट्स एन आर्ट। जब हम घर में अकेले होते हैं तो गीत गुनगुनाना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लता मंगेशकर स्टेज पर आकर गीत गाते हैं तो लोग वाह वाह करने लगते हैं। बॉम्बे में बिल्डिंग के नीचे बच्चों को क्रिकेट खेलने में बहुत आनंद आता है, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर वो बल्ला लेकर क्रिकेट के मैदान में जाता है तो हजारों की निगाहें उन पर टिक जाती है, बिकॉज उन पर इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं। उसी तरह फ्रेंड्स, सारे संसार में लोग तो जी रहे हैं, वेदर इज बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, वेदर इज फॉरेन कंट्रीज, एनीवेयर, लोग तो जी रहे हैं, लेकिन जीवन की क्वालिटी कैसी है और उसको आज हम थोड़ा सा चेक करेंगे। तो वी आर डिस्कसिंग टुडे बेसिकली फोर एस्पेक्ट्स, फोर डिपार्टमेंट्स ऑफ क्वालिटी। और वो फोर डिपार्टमेंट है, नंबर वन इज क्वालिटी ऑफ हेल्थ, दूसरा आज हम जो चेक करेंगे वो है क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट, तीसरा हम चेक करेंगे द क्वालिटी ऑफ आवर एक्शन, हमारा व्यवहार सबके साथ कैसा होना चाहिए। And the fourth that we are going to check is the quality of vision. और ये चार क्वालिटी को आज हम चेक करेंगे। तो जैसे जैसे हम इस यात्रा में चल रहे हैं तो आप हर एक भाई और बहन से मुझे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को चेक करना। द फर्स्ट विल टेक अप द क्वालिटी ऑफ हेल्थ, और इसमें बहुत बहुत जरूरी है द फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ दिस वंडरफुल ब्यूटिफुल मशीन, एंड दैट इज एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे स्वामी भाई वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज, है ना भाई, बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप ज्ञान सरोवर आए हो तो थोड़ा सा समय निकालकर सुबह का जो 6 बजे का जो एक्सरसाइज प्रोग्राम हमारे जो सुरेखा बहन जी करते हैं तो उसको जरूर जरूर अटेंड करो। क्यों? क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो हमको एक हमारा बहुत वंडरफुल सब्जेक्ट ही था जिसको हम कहते थे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और इसमें हमको सिखाया जाता था मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, है ना, ये सिखाया जाता था। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां चलती है, सबसे कॉस्टली गाड़ी कौन सी होगी बताइए? अरे वाह, परफेक्टली राइट आंसर, मर्सिडीज बेंज। कितनी कॉस्ट होगी बताइए, कितनी कॉस्ट होगी? 35 लाख। यू नो, ये मर्सिडीज बेंज होती है, रोल्स रॉयस होती है, फरारी होती है ना, ये कस्टमाइज गाड़ी होती है। ये मारुति 800 की तरह मास प्रोडक्शन नहीं होता है। आपके पास जितना धन होगा तो उसके हिसाब से वो आपको गाड़ी बनाकर देंगे, राइट? और हमने देखा जब लोग मर्सिडीज बेंज खरीदते हैं दे बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ द हेल्थ ऑफ द कार। आफ्टर ऑल इज 35 लाख, तो क्या करेंगे, एक दोस्त के ऊपर टर्पालिन बिठा देंगे, एक अच्छे ड्राइवर को बिठाएंगे, ज्यादा भीड़ होगी तो नहीं चलाएंगे। आफ्टर ऑल इट इज 35 लाख यार, तो बहुत कॉस्टली है तो उसकी मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए। उसी तरह फ्रेंड्स, ईश्वर ने भी हमको एक बहुत सुंदर यह मर्सिडीज बेंज गाड़ी दी है। आप बता सकते हैं इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी होगी? डोंट से लेस देन 35 लाख, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक। कितनी कॉस्ट होगी बताइए? बहुमूल्य है, अमूल्य है, इट्स प्रेशियस। वैसे अमेरिका में इसका रिसर्च किया गया, दे ट्राई टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस वंडरफुल मर्सिडीज बेंज। कैसे किया गया? सपोज किसी व्यक्ति के आंखों में प्रॉब्लम है, यू गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। हार्ट में प्रॉब्लम तो हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी स्पेशलिस्ट। सारी कॉस्टिंग की गई। एंड आई कोट डॉक्टर सतीश गुप्ता हु टोल्ड मी दिस फिगर, और बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, पहली बार जब उन्होंने ये फिगर बताया वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब उन्होंने कहा स्वामी द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस वंडरफुल मर्सिडीज बेंज जो ईश्वर ने हमको दिया है इज अप्रोक्सीमेटली 220 करोड़, 220 करोड़ की गाड़ी है। भाई तालियां तो बजाइए। और फिर अगर कोई कहता है कि मुझे ये 220 करोड़ की गाड़ी के लिए मेंटेनेंस का टाइम नहीं मिलता है तो सचमुच बहुत आश्चर्य होता है। रिसेंटली आई वाज इनवाइटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ काठमांडू नेपाल, तो वहां मैं सारे फैकल्टी मेंबर्स को जब ये लेक्चर ले रहा था, और जैसे ही मैंने कहा ये 220 करोड़ की गाड़ी है तो इमीडिएटली एक फैकल्टी खड़े होकर पूछे, सर आई हैव गॉट अ डाउट सर। मैंने कहा कौन सा डाउट है? बोला सर ये जो 220 करोड़ जो आपने बोला वो इंडियन रुपीज है या नेपाली करेंसी है सर? मैंने कहा इंडियन रुपीज है। तो इमीडिएटली स्टार्टेड कैलकुलेटिंग, बोला सर नेपाली करेंसी इट इज 352 करोड़, मोर कॉस्टली नेपाल। तो मैंने कहा या देयरफॉर मोर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड इन नेपाल। बहुत बहुत जरूरी है सुबह उठकर हम थोड़ा सा मेंटेनेंस जरूर जरूर करें। एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से पूछा गया कि आपको ये मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है, और मानो उनका जवाब क्या था। भगवान का जवाब सर, उन्होंने जवाब ये दिया कि मुझे मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह लगता है कि दीज ह्यूमन बींग्स दे इन्वेस्ट देयर कंप्लीट हेल्थ टू गेन वेल्थ, दे इन्वेस्ट देयर कंप्लीट हेल्थ टू गेन वेल्थ, आफ्टर मेनी मेनी इयर्स दे हैव टू री इन्वेस्ट देयर कंप्लीट वेल्थ टू रीगेन हेल्थ। कहते जान है तो जहान है यार, है ना। तो आप में से कितने भाई बहने कल सुबह का 6 बजे एक्सरसाइज प्रोग्राम में आएंगे, हाथ उठाइए। हाँ भाई, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। कितनी करोड़ की गाड़ी है? हाँ, तो वो सुबह जल्दी एकदम अलार्म बज जाएगा और भागते भागते आएंगे। वैसे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज तो मैंने देखा बॉम्बे में भी बहुत सारे लोग करते हैं, सुबह उठेंगे, वॉकिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे। लेकिन विशेष तौर पर ब्रह्मा कुमारी जो रिसर्च कर रही है और वहां ये कहते हैं कि एक्सरसाइज तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो? आप लोग चल रहे हैं लेकिन बहुत गुस्से से चल रहे हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए जब आप एक्सरसाइज करते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो तो बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ करते हो। तो मैं एक दो एक्सरसाइज आपको यहां बताऊं, यस और नो? यस। और थैंक्स टू डॉक्टर गिरीश पटेल हु हैज डिवाइस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ दीज एक्सरसाइजेस विच इट डिफाइंस वेरी वंडरफुली एज साइकोसोमैटिक डायनामिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड, साइको फिजिकल डायनामिक एक्सरसाइज, फिजिकल मीन्स शरीर। तो एक दो एक्सरसाइज जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सभी स्ट्रेट बैठे, सभी स्ट्रेट बैठे, वाओ गुड, है ना। अब आप देखना और जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, ठीक है, और बहुत खुशी से करना, बहुत आनंद के साथ मुस्कुराते हुए करना, क्योंकि टैक्स तो लगने वाला नहीं है, तो यू कैन रियली एंजॉय, है ना। चलिए फ्रेंड, जब मैं कहूंगा वन तो आप जोरदार ऐसा ताली बजाना, अभी नहीं करना, है ना, वेरी हाइपर एक्टिव पीपल है। अब जितना जल्दी हो गया 220 करोड़ का मेंटेनेंस करते, आई रियली अप्रिशिएट इट, है ना। लेकिन एक मिनट आप सुन लीजिए, क्योंकि मन में क्या ऑटो सजेशन देना यह भी बहुत जरूरी है। तो जब मैं कहूंगा वन, अभी नहीं करना, पहले देखना, तो आप महसूस करना, ताली नहीं बजाएंगे, जस्ट फील करना, एकदम टच करेंगे, और महसूस करेंगे कि आप उस सुप्रीम सर्जन को टच कर रहे हो, ईश्वर को, ठीक है। और जब मैं कहूंगा टू, तो आप महसूस करना कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आ रहे हैं, फील करना, महसूस करना। करेंगे तो मुस्कुराते हुए, अभी करिए। वन, ताली नहीं बजाएंगे, बस टच करेंगे और महसूस करिए कि आप उस सुप्रीम सर्जन ईश्वर को स्पर्श कर रहे हो। अच्छा टू, हाँ, व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन फ्रॉम हियर, हाँ महसूस करिए, ग्रेट, गुड। एक और बार करेंगे, वन टू, ग्रेट, ब्यूटिफुल, हाँ करेक्ट। फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे हम उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हैं ना, वी बिकम हेल्दी, वी बिकम डिजीज फ्री। अच्छा डॉक्टर्स कहते हैं जो सबसे ज्यादा डिजीज होने का कारण इट्स एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, है ना। तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स फ्रॉम दिस बॉडी। तो डॉक्टर पटेल साहब, एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद के साथ मैं करता हूं। जब मैं कहूंगा वन, तो अगर आपके शरीर में और मन में जो टॉक्सिन्स है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम टॉक्सिन्स तो मन में है, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, क्रोध, ये सारा मन में है। तो जब मैं कहूंगा वन, तो अगर टॉक्सिन्स है तो, अगर नहीं है तो डोंट वरी, लेकिन अगर है, है ना, तो क्या करना, आप उसको इस तरीके से झटक दो। और जब मैं कहूंगा टू, तो उसको थोड़ा धक्का मार के और बाहर फेंक देना, है ना। आप ये महसूस नहीं करना कहीं दूसरों के टॉक्सिन्स मेरे पास नहीं आ जाए, डोंट वरी अबाउट दैट, है। ज्ञान सरोवर इज टू प्योर, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। सभी करेंगे, बहुत खुशी के साथ करना, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन, बच्चों की पढ़ाई हो या कुछ भी हो, आप आज उसको जस्ट फ्री योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द टेंशन। सभी करेंगे, चलिए हियर वी स्टार्ट। वन सभी करो, टू थोड़ा धक्का मार दो, करेक्ट। एक और बार, वन टू, है ना। माता है तो इतना जोर से धक्का मार रहे कि सीधा इंडिया के बाहर चला जाए, है। क्योंकि ये हमारी बहनें और माता है ना, दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस। सारा परिवार ना, इट डिपेंड्स अपॉन देयर हेल्थ। अगर घर में बहन का हेल्थ डाउन हो गया तो सारा फैमिली ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। हाँ, तो योर हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज करना, ठीक है, नंबर वन। अच्छा नंबर टू बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अच्छा फ्रेंड्स, ये रोड में बहुत गाड़ियां चलती है, है ना, और एरोप्लेन भी हवा, ये आकाश में उड़ता है। अच्छा बताइए, दोनों की क्वालिटी ऑफ पेट्रोल में कौन सा अच्छा होगा, ये रोड में चलने वाली गाड़ी या एरोप्लेन? माई गॉड, परफेक्टली राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस है, आई एम रियली इंप्रेस्ड। अच्छा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो रोड में जो गाड़ियां चलती हैं, अगर उसको पेट्रोल के साथ थोड़ी मिलावट कर दिए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कहीं ना कहीं गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन अगर एरोप्लेन में अगर पेट्रोल के साथ मिलावट कर दी और बीच में कहीं एरोप्लेन रुक गई तो क्या होगा? नहीं, हम नीचे थोड़ी ना आएंगे, हम तो सीधे ऊपर जाएंगे यार, नीचे आने की तो मार्जिन ही नहीं बचेगी। कैसी बात करते हैं, है ना, हमारा तो सीधे ऊपर का टिकट हो जाएगा, है ना, कंफर्म टिकट, है ना। कहने का भाव ये है फ्रेंड्स, कि हम किस प्रकार का फ्यूल गाड़ी में डालते हैं, उसी तरह ये जो 220 करोड़ की गाड़ी में हम किस प्रकार का फ्यूल डालते हैं। एक छोटा सा सजेशन दूंगा, आप इसको अच्छा लगेगा तो जरूर यूज करना, नहीं तो जाते जाते किसी भी डस्टबिन में डाल देना, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हो, आप लोग इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत दुख होकर मुझे कहना पड़ता है कि हमारे बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि कुछ पूछो मत, लेकिन बीच बीच में मैं उनको देखता हूं कि 220 करोड़ की गाड़ी को वो किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल, है ना, ये सारा जो हम अपने 220 करोड़ की गाड़ी में डालते हैं तो कैसी ना हालत हो जाएगी, इस पर जरूर आप विचार करना। तो किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? कैन वी हैव प्योर वेजिटेरियन डाइट? ओके, हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है इसमें हमने ये पाया है कि दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता तो बहुत अच्छी बात बताता हूं कि बहुत सारे संसार के नामी ग्रामी लोग जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो डा विंसी, पाइथागोरस, सोक्रेटस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, कार्ल लुईस, मार्टिना नवरातिलोवा, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड स्वामी भाई, वी हैव गॉट वन थिंग इन कॉमन, वी आर ऑल प्योर वेजिटेरियंस। फ्रेंड्स वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल क्वालिटी क्लब। मैं आपका इस क्वालिटी क्लब में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको आपके सामने कितना भी स्टैटिस्टिक्स दे दूं, कितना भी डाटा दे दूं, कितना भी 10 बार रिसर्च बोलूं, विश्वास करना या नहीं करना आपके ऊपर है। लेकिन कहते हैं एक्सपीरियंस इज अवर बेस्ट टीचर, अनुभव हमारा सबसे बड़ा गुरु है। फ्रेंड्स, मैं आपको बस सिंपल सा सजेशन दूंगा कि आप बस 2 हफ्ते बी ऑन अ वेरी प्योर वेजिटेरियन डाइट। आप महसूस करेंगे शरीर के साथ साथ मन भी बहुत बहुत हल्का हो रहा है। एक और बात मैं बताता हूं कि कहते जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाएगा, इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि जब आप भोजन बना रहे हो तो आपकी मानसिक अवस्था कैसे है। विशेष तौर पर मैं माताओं को आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप भोजन बना रहे हैं बहुत खुशी और बहुत आनंद के साथ भोजन बनाइए। अगर आप बहुत गुस्से से भोजन बनाएंगे, यही हमारा जीवन है क्या, काहे का क्वालिटी है ये? इस थॉट प्रोसेस से अगर आपने भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का भोजन खाएगा ऑटोमेटिकली उनकी क्वालिटी भी ऊपर नीचे हो जाएगी। ऐसा काफी बार भाई साहब लोग ना मेरे पास आते हैं और विशेष तौर पर बहनें आते हैं और मुझसे कहते हैं, स्वामी भाई ऑफ लेट ना हमारे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो मैं बहन जी से मुस्कुराते हुए कहता हूं, बहन जी आप किस वाइब्रेशन से भोजन बना रहे हैं? दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। है तो भाई लोग बहुत खुश हो रहे हैं, अच्छी बात बताई स्वामी भाई ने बहनों को, है ना? लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना। कौन से शास्त्र में लिखा कि आप हेल्प नहीं कर सकते हो? कोई शास्त्र में लिखा क्या? एक बार ट्राई करना, है ना। जब वापस आप जाएंगे ना आपके घर पर, तो जब बहन जी भोजन बना रहे हैं तो एक बार किचन में जाकर बहुत प्रेम से टमाटो कट करके देना। पहले तो बहन जी आपको घूर के देखेंगे, पता नहीं ये कहां गए थे, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये। लेकिन उनके चेहरे को देखना फ्रेंड्स, एकदम फूल की तरह एकदम खिल उठेगा, बिकॉज दैट्स अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, दैट्स एन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। कभी आप बॉम्बे में आ रहे हैं तो ये स्वामी भाई से मिलने के लिए नेरुल न्यू बॉम्बे में जरूर आना, मैं आपको बहुत प्रेम और स्नेह से डोसा और सांबार जरूर खिलाऊंगा। भाई तालियां तो बजाइए, है ना? ओके, एंड थैंक्स टू माय पापा हु हैज टॉट मी हाउ टू कुक डोसास एंड सांबार्स। तो जरूर जरूर मैं आपको बहुत स्नेह ईश्वर के याद में और स्नेह में जरूर खिलाऊंगा, ठीक है। नंबर 1 इज द क्वालिटी ऑफ हेल्थ, दूसरा जो है वो है क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट। यस ब्रदर, आगे बढ़ेंगे हम। इट्स कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट। अच्छा, अगर हम किसी भी तनाव के ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें तो कहते हैं, तनाव को अगर हम प्लॉट करें तो कहते हैं जनवरी फरवरी में तनाव बढ़ने लगता है, और सभी जो यहां पे बहने और भाई लोग बैठे ना उनका तनाव सबसे ज्यादा मार्च अप्रैल में होता है, फिर धीरे 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 तनाव कम हो जाता है। तनाव किस बात का होता है? किसका? एग्जाम्स का। परफेक्टली राइट आंसर। इंडिया में मैंने कितने ना सेमिनार्स और वर्कशॉप्स किए और मुझे ये स्टैंडर्ड जवाब मिला है। आज तक किसी भाई ने ये नहीं कहा कि उस समय इनकम टैक्स का रिटर्न होता है, उस समय प्रोडक्शन शेड्यूल मीट करना ही नहीं, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। बस एक स्टैंडर्ड जवाब था बच्चों के पढ़ाई को लेकर। यू ऑल अग्री विथ मी फ्रेंड्स? यस और नो? यस। और अक्सर करके मैंने देखा है जब हमारी जो माताएं होते ना, जब बच्चों का जब एग्जाम्स होता है उस समय हमारी माताओं का प्रेम बच्चों से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और जिस दिन बच्चे का एग्जाम होगा उस दिन बहुत प्रेम से, बेटा तेरा एग्जाम है ना, तो हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, अच्छी तरह ब्रेकफास्ट का, आफ्टर ऑल योर एग्जाम्स ना 10 o'clock बेटा। और बेटा कहेगा, मामा मुझे आज भूख नहीं। नहीं नहीं तेरे एग्जाम्स है ना, प्लीज टेक इट। उसको जबरदस्ती करते हैं। इट्स इमोशनल फ्रेम ऑफ माइंड, आई सर्टनली अंडरस्टैंड, बट उस समय वो स्टूडेंट को प्रॉब्लम इज नॉट विद द स्टमक, द प्रॉब्लम इज देयर विद द माइंड। शरीर के लिए एक्सरसाइज किया, शरीर के लिए भोजन दिया, वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन उस समय उसको जरूरत है वो है मन का भोजन, और मन का भोजन है विचार। तो फ्रेंड सारे दिन में चेक करना है कि हम किस प्रकार के विचार अपने बुद्धि में देते हैं। वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। टू गिव यू अ क्लासिक एग्जाम्पल, बेटी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मा आई हैव गॉट माई ट्यूशन क्लासेस, आई बी बैक शार्प 6 PM। कितने बजे? 6 PM। मम्मा कहती परफेक्टली ओके। 5:30 बजे तक मम्मी इज इन अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, बहुत प्रेम से किचन में जाएगी, ब्रेकफास्ट बनाएगी, बीच बीच में जाकर खिड़की में देखेगी भाई बेटी की साइकिल की घंटी बज रही कि नहीं, 5:45, 5:50। और जैसे ही घड़ी में 6 बजता है मामा के मन में वो तूफान स्टार्ट होते, 6:05, 6:10, 6:15, 6:20 तक, एंड देयर इज अ फ्लड ऑफ थॉट्स। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ज्यादातर विचार पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? माय गॉड, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे, सभी अनुभवी बैठे, एकदम राइट आंसर, एकदम परफेक्टली राइट आंसर। ओके, अब 6:20, 6:25 मम्मी इज नॉट एबल टू कंट्रोल हरसेल्फ, शी पिक्स अप द फोन, पुअर पापा इज बिजी इन ए मीटिंग, मुझे कुछ नहीं सुनना, वहां फोन करो यहां फोन करो, बेटी अभी तक आई क्यों नहीं। तो पापा जो होते मम्मी को पैसिफाई करने की कोशिश करते, नथिंग टू वरी, आ जाएंगे, लेट हो गए होंगे, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप ही ने आपकी बेटी को सर पर चढ़ाकर रखा है। पर पुअर पापा वंडर खाते, मैंने कब सर पर चढ़ाया है ना। अब बेटी के साथ क्या हो रहा है, अब ट्यूशन मास्टर्स लहर से पढ़ा रहे हैं, यू कैनॉट एक्सपेक्ट द गर्ल टू स्टैंड अप एंड से सर आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट विद माय डियर लविंग मम्मी शार्प 6 PM, बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। 6:30 बजे जब ट्यूशन मास्टर छोड़ते हैं तो बेटी बहुत पीसफुली ब्लिसफुली साइकिल चलाते चलाते आते हैं, बाय द टाइम शी रीचेज द रेसिडेंस इट इज 6:45, और जैसे ही मम्मी दरवाजा खोलती है AK-47 टाटा टाटा टाटा, फायरिंग पर फायरिंग। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बेटी भी रिएक्ट करती है। आपको इतना बेसिक कॉमन सेंस नहीं है, ये नहीं किया वो नहीं किया, एंड द पुअर पापा रिटर्न्स बैक एट 7:30, द होल हाउस इज इन कर्फ्यू, लॉ एंड ऑर्डर इज इन अ टेरिफिक स्टेट ऑफ सिचुएशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ना, क्यों हुआ? क्योंकि जो पहला संकल्प मम्मा के मन में आया ना, मम्मा ने उस संकल्प की क्वालिटी को चेक नहीं किया, नेगेटिव थॉट्स को लेकर आते गए, और जिस गाड़ी को जहां ब्रेक लगाना चाहिए अगर आप वहां पे एक्सलेट करते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? सो राजयोग मेडिटेशन इज अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक विच एम्पावर्स द ब्रेकिंग सिस्टम, जहां मुझे पता है कि कहां पे मुझे ब्रेक लगाना है, और जो मम्मा का जो सारा स्नेह उस बेटी के प्रति था, इट इज टोटली कन्वर्टेड इंटू एंगर। यू कैन सी द नेट रिजल्ट जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट चेक द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स। इसे कहते हैं अ माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन। हमारा मन एक पैराशूट की तरह है, तभी काम करता जब वो ओपन होता है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हाउ डू आई ओपन दिस पैराशूट, ये मन रूपी पैराशूट को मैं कैसे ओपन करूं? अगले 2-3 दिनों में आप ये सीखते जाएंगे, लेकिन कहा जाता है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ हार्ड वी वर्क बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ शार्प वी वर्क। और विशेष तौर पर 27 तारीख को 2 लेक्चर्स आपको ये मदद करेंगे, एक तो डॉक्टर गिरीश पटेल का द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और शाम को एक सेशन मैं आपके साथ दूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय दिव्या दीदी जी ने उसको लास्ट सेशन रखा, क्योंकि जब आप यहां से निकलेंगे ना, 28 को आप मैक्सिमम लोग निकल रहे हैं, 27 रात को मैं आपको एक बहुत सुंदर गिफ्ट दूंगा, और ये गिफ्ट आप अपने बच्चों को जरूर देंगे, क्योंकि जैसे आप माउंट अबू से वापस पहुंचेंगे तो सबसे पहले बच्चे ये पूछेंगे, मामा आपने माउंट अबू से मेरे लिए क्या लाए लेकर आए? आप उनके लिए स्थूल गिफ्ट जरूर लेकर आएंगे, लेकिन एक बहुत सुंदर गिफ्ट मैं आपको दूंगा, और जहां पे हम आपको यह बताएंगे हाउ लर्निंग कैन बी मेड फन, है ना। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं कितना सहज रीति से वो कैसे पढ़ सकते हैं, और ऐसी वंडरफुल टेक्नोलॉजी मैं आपके साथ उस दिन जरूर शेयर करूंगा। लेकिन आज के लिए मैं बस इतना कहूंगा कि हमें अपने बच्चों को हर परिस्थिति में उनको प्रिपेयर करके रखना है। और विशेष तौर पर मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट सिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स, जो मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस में बहुत टफ माना गया है। 3-4 महीने जब हमारे स्टूडेंट्स ये पढ़कर जब तैयार होते एग्जाम्स के लिए, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छी बात कहता हूं, मैं कहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा 10 क्वेश्चंस, और एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये बातों पर अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं अपने कुछ एक दोस्तों से आपको मिलाना चाहूंगा, ऐसे लोग जिनको देखकर सारी दुनिया ने कहा कि वो हार गए हैं, और शायद अनिता दीदी जी ये लोगों के लिए आपका एक्चुअल जो क्रेडिट, ऐसे महान हस्ती इस संसार में हैं जिनको देखकर सारे लोग ने कहा कि आप फेल हो गए हो, बट देयर वर दोस पीपल हु वर एबल टू स्प्रिंग बैक टू सक्सेस। मेरे ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन पर प्लीज फ्रेंड्स हंसना नहीं, लेकिन इनको देखकर मुस्कुराना जरूर, और अगर इनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं तो जरूर लेकर आप जाइए। यस, लेट अस लुक एट दिस वंडरफुल, माय वेरी वंडरफुल फ्रेंड्स। Thank you.
have the feeling of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. The strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you.
मैं तीन कारण बताता हूं जिनको आपको जिनके कारण आपको तालियां बजानी है। पहला कारण, इनके लिए हम तालियां बजाएंगे, होल्ड ऑन। दूसरा कारण, अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखकर तालियां बजाएंगे। और तीसरा कारण, इतनी जोर से तालियां बजाएंगे कि हमारी तालियों की गड़गड़ाहट उस ईश्वर तक टच हो जाए। थैंक यू गॉड फॉर दिस ग्रेट लाइफ ही हैज गिवन टू अस। अभी बजाइए। And thanks to my wonderful friends of Nepal, जिन्होंने मुझे ये video clipping दी, thanks to them. अच्छा, तो हमने quality of health देखा, quality of intellect देखा, और तीसरा है the quality of action. हम जो व्यवहार करते हैं उसकी quality कैसे है. Friends, कहते हैं संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं. कौन से होते हैं दो प्रकार के लोग? इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे होते. और कौन से होते हैं? पॉजिटिव होते, नेगेटिव होते, और सकारात्मक होते, नकारात्मक होते, और रिच एंड पुअर होते हैं, अमीर और गरीब होते हैं, राइट? एक बार हमने कंपनी में क्वेश्चन पूछा, सारे लोग वहां एकत्रित हुए थे, आई वाज टेकिंग अ सेशन फॉर देम, तो वहां मैनेजर भी बैठे थे, उन्होंने कहा स्वामी सर, अब संसार में कितने प्रकार के लोग हो तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे ऑफिस में दो प्रकार के लोग हैं. हमने कहा कौन से? बोला फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल हार्ड वर्किंग, एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल हार्डली वर्किंग. सर, हार्ड वर्किंग एंड हार्डली वर्किंग. वैसे कहते हैं संसार में दो प्रकार के लोग होते, बहुत ध्यान से सुनना. पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो जाते हैं, होता ना। कुछ लोगों से हम मिलना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो वहां से आए हम यहां से कट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों से मिलना चाहते और कुछ लोगों से कभी भी हम मिलना नहीं चाहते। क्योंकि फ्रेंड्स, एवरी वन ऑफ अस हैव गॉट एन इमोशनल अकाउंट विथ एवरी अदर पर्सन। हर एक व्यक्ति का हर एक व्यक्ति के साथ एक इमोशनल अकाउंट होता है, और जिस व्यक्ति का इमोशनल अकाउंट अच्छा होता है जब वो आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और अदरवाइज इट बिकम्स वाइस वर्सा। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे सबके साथ एक बहुत अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशंस हो। और मुझे याद है वो 12 वर्ष पहले जब मैं ये विद्यालय में आया, आप ही की तरफ बैठा था, और हमारे ये दादियां दीदियां जब वो बातें कर रहे थे और जब वो हमें गिफ्ट और टोली देते थे, स्लोली आई स्टार्टेड क्रिएटिंग एन अकाउंट विद देम। और एक ऐसा वंडरफुल एक इमोशनल अकाउंट उन्होंने मेरे साथ जनरेट किया कि मुझे लगा कि यस, इवन मुझे भी अपना जीवन इतना ही श्रेष्ठ बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कुछ एक बातें बताऊंगा जिसके कारण हम सबके साथ एक बहुत अच्छा अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे भी सोचने की बात है, हमें तनाव किससे होता है? कोई रास्ते चलते फिरते लोगों से तनाव नहीं होता है, लेकिन तनाव हमें उनके साथ होता है जिनके साथ हमारा हर दिन व्यवहार होता है, कनेक्टिविटी होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सो दैट आई एम ऑलवेज कूल काम एंड माई क्वालिटी ऑफ एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज, यस, आवर एक्शन शुड बी गाइडेड बाय अनकंडीशनल लव। निस्वार्थ स्नेह होना चाहिए। आप कहेंगे स्वामी भाई, आजकल के जमाने में निस्वार्थ स्नेह होता किधर? होता है। दो स्नेह निस्वार्थ होता है, एक है वो ईश्वर का स्नेह और दूसरा होता है एक मां का स्नेह। वो देखो छोटू मां की गोद में कितना खुशी का अनुभव कर रहा है, बिकॉज दैट्स अ वेरी वंडरफुल इमोशनल अकाउंट। एक बार मां जो होती ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मामा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? बोला, यस। तो मामा बिल देखती है और मालूम छोटू क्या लिखता है? मामा, इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मामा, आपने बकेट ऑफ पानी को यहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मामा, आपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब मामा, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि आप मेरे डियर लविंग मम्मी हो, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। मामा ये बिल को देखती, अपने छोटू को देखती, वेरी क्यूट बॉय। तो मामा भी मुस्कुराती है। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, मां लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे, रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से, कॉलेज से थके आ रहे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भोजन डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता और अपनी मम्मी को देखता और कहता, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इनडेप्टेड फॉर एवर। जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, समरी इज वेरी सिंपल, कीप योर मामा हैप्पी, द होल वर्ल्ड विल बी हैप्पी विथ यू। Keep your mother happy. ध्यान से सुनना friends. Keep your mother happy and please keep your mother-in-law also happy. Very, very important. है ना? अगर mother-in-law खुश तो पारिवारिक जीवन का quality भी बहुत अच्छा हो जाएगा. वैसे इस विद्यालय में मैंने इतना अच्छी बात सीखी, यहां पे सिर्फ हमारे पास एक माँ नहीं है, एक माँ होती है जो हमें जन्म देती है, लेकिन दूसरी माँ है वो ईश्वर, और तीसरी माँ हम उनको कहते हैं जिन्होंने हमें इस ज्ञान मार्ग पर लेकर आया। और आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, जब हम पहली बार कोई विद्यालय में जाते हैं ना, तो जो बहन सबसे पहली बार हमको ज्ञान सुनाते हैं, मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज 5-6 वर्ष के बाद मैं उस अलौकिक मां कल्पना बहन फ्रॉम कांदीविली से मिला, और जब मैंने उनको देखा तो मुझे वही बचपन के दिन याद आ गए। भाई मेरी अलौकिक मां के लिए तालियां तो बजाइए। उस मां को बहुत बहुत दिल से थैंक्स करूंगा। लौकिक मां और पारलौकिक मां को तो हमेशा दिल से धन्यवाद होता है। लेकिन एक जो नया जन्म देने वाले होते हैं, जिस ज्ञान मार्ग में हमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ इतना महान बनाते हैं, इट्स प्योर अनकंडीशनल लव। दूसरा है, कहते हैं लेट्स लर्न द टेक्निक ऑफ अप्रिसिएशन। अगर हमारे एक्शंस की क्वालिटी को अच्छा करना है तो सबको अप्रिशिएट करो। और कहते हैं चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत होती है ना, सो स्टार्ट विद द फैमिली। एक बार हस्बैंड 7 बजे जब ऑफिस से घर वापस आए तो क्या देखा, वाइफ आराम से सोफा सेट में बैठे हैं, टेलीविजन ऑन है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। हस्बैंड वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो हस्बैंड ने ड्राइंग रूम देखा तो बिल्कुल स्वच्छता नहीं, सफाई नहीं। तो वाइफ से आकर पूछा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, वाइफ ने कहा कुछ नहीं। हस्बैंड बेडरूम में गए तो सारे सुबह की वैसी अवस्था। फिर वाइफ से आकर पूछा टेल मी यार व्हाट्स योर प्रॉब्लम, बोला कुछ नहीं। हस्बैंड किचन में गए तो सारे रात के बर्तन भी ऐसे पड़े। फिर वाइफ से आकर पूछा टेल मी बाबा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तो वाइफ ने बहुत सुंदर जवाब दिया। वाइफ ने कहा हर दिन जब आप शाम को 7 बजे ऑफिस से घर वापस आते हो आप मुझसे एक स्टैंडर्ड डायलॉग बोलते हो और आपका डायलॉग होता है सारा दिन घर में बैठकर आप करते क्या हो, आज मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग टुडे। तो हमको लगता हम ही सुपर हीरो हैं, बाकी सब साइड एक्टर्स है। नो, अप्रिशिएट एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो व्यक्ति घर में अप्रिशिएट कर सकता है ना, बिलीव मी ही विल बी द सेम पर्सनैलिटी व्हेन ही गोज टू द ऑफिस एंड हिज सबॉर्डिनेट्स वुड लव टू इंटरेक्ट विथ हिम बिकॉज ही विल हैव द आर्ट ऑफ अप्रिशिएटिंग। नंबर टू। नंबर थ्री है, आगे बढ़िए, कहते हैं वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर एंगर। एंगर को मैनेज करो। अच्छे अच्छे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते जस्ट बिकॉज ऑफ एंगर। एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है, डेंजर, डेंजर। गलती से एक बार मैंने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछ बैठा, मैंने कहा स्टूडेंट्स एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है, और हमारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते, एक ने जवाब दिया सर एंगर के सामने डी लगाने से डैंगर होता है सर। मैंने कहा डैंगर नहीं है, डेंजर है, डेंजर। और हमारा रिसर्च प्रोग्राम कहता है मोर देन 80% ऑफ द पीपल जिनको हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं वे लोग वो होते हैं जिनको मिनट मिनट पर गुस्सा आता है। सो फ्रेंड्स प्लीज अगली बार आप गुस्सा करेंगे ना तो बहुत ध्यान से सोच समझ कर करना। वैसे एक बार एक न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर जब वो ऑफिस में आए तो उनको बहुत प्यास लगने लगी, तो उन्होंने देखा एक बेल था तो बेल को दबाया तो प्यून आए, तो उन्होंने बहुत वंडरफुली कहा कैन यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेकर आ सकते क्या। तो प्यून ने कहा मेरा काम पानी वानी लेकर आने का नहीं है। फिर बोला आपका काम क्या है, बोला मेरा काम है फाइल्स लेकर आना फाइल्स लेकर जाना, इसके अंतर्गत कुछ काम है तो बताओ। तो उसने कहा अच्छा आपका काम है फाइल्स लेकर आना फाइल्स लेकर जाना, इट्स वेरी कूल। अच्छा बोला ओके टुडे इज माय फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग ऑफिस कैन यू टेल मी द ओल्डेस्ट फाइल, बोला द ईयर 1960, बोला कैन यू गेट मी द फाइल ऑफ 1960, बोला यस ही हैज गॉट नो दैट ऑप्शन, गोज ब्रेक्स हिज हेड गेट्स द फाइल ऑफ 1960। द मैनेजर मोटिवेट्स हिम, गुड वंडरफुल। दूसरा दिन वो बेल दबाते हैं प्यून आते हैं तो बहुत प्रेम से कहते हैं टुडे 1961 प्लीज, अगेन नो ऑप्शन, गोस ब्रेक्स हिज हेड गेट्स द फाइल ऑफ 1961, अगेन द मैनेजर मोटिवेट्स हिम। तीसरा दिन जैसे ही मैनेजर बेल दबाते हैं द प्यून एंटर्स विद अ ग्लास ऑफ वाटर, सर पहले आप पानी पीजिए सर। जस्ट इमेजिन करिए उस मैनेजर की जगह पर और कोई होता तो क्या करता था। वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर एंगर एंड थैंक्स टू राजयोगा मेडिटेशन वेयर आई हैव लर्न टू अ वेरी कंसिडरेबल एक्सटेंट टू मैनेज माय एंगर। काफी लोग पूछते स्वामी भाई आप एंगर को मैनेज करने के लिए क्या करते हो, एक ग्लास पानी पीते हो क्या, 1 से 10 तक गिनती गिनते हो, 10 to 1 गिनती गिनते हो। मैंने कहा मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब मुझे कोई गुस्सा दिलाए ना तो मैं बहुत प्रेम और स्नेह से अपना हाथ दिल में रखता हूं और कहता मुझे हार्ट अटैक से नहीं मरना यार, आई डोंट वॉन्ट टू सफर अ हार्ट अटैक एंड दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू मैनेज योर एंगर, कहते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ स्माइलिंग, मुस्कुराना सीखो। और मुझे बहुत खुशी है जब से आप ज्ञान सरोवर आए तो आपके चेहरे में थोड़ी मुस्कुराहट आ गई है ना, लेकिन कभी कभी मैं बॉम्बे में लोगों को देखता हूं माय गॉड उनका चेहरा एकदम रोबोट की तरह होता है। और काफी लोग क्या करते हैं दे गो एंड ज्वाइन लाफ्टर क्लब्स और वहां जाकर बहुत हंसते हैं, क्यों, क्योंकि ऑफिस में तो हंस सकते ही नहीं है, घर में तो बिल्कुल मार्जिन नहीं है और कहते हैं स्माइल करो लाफ करो, तो चलो यार गार्डन में सुबह सुबह जाकर हंसते हैं। इट्स अ गुड एक्सरसाइज, इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कैन आई बी ह्यूमरस इन माई लाइफ। जीवन को इतना गंभीर भी नहीं बनाओ लेकिन गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। टू गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल आई जस्ट टेक अनदर 10 to 12 मिनट्स विद यू। एक बार द जापानीज प्रेसिडेंट वाज ऑन अ ट्रिप टू अमेरिका, सो द बिफोर एम्बार्किंग ऑन द ट्रिप द ऑफिसर्स ने उनको कहा सर आप अमेरिका जा रहे हैं, बोला यस, बोला सर हाउ अबाउट कम्युनिकेटिंग विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट इंग्लिश सर. बोला माई गॉड आई डू नॉट नो इंग्लिश. तो उनका ऑफिसर्स ने कहा सर आपने सुना नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन. अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से इंग्लिश में बातें करेंगे बहुत अच्छा इंप्रेशन बैठेगा. बट आई डू नॉट नो इंग्लिश. तो उनका ऑफिसर्स ने कहा सर देश के खातिर एक दो सेंटेंस रट सकते ना. बोला हां देश के खातिर रट सकता. बोलो क्या रटना है. तो उनके ऑफिसर्स ने कहा सर जैसे आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलेंगे जस्ट आस्क अ लॉजिकल क्वेश्चन हाउ आर यू. तो वह जवाब देंगे आई एम फाइन. इन टर्न इज गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन हाउ आर यू. तब आप जवाब देना सेम एज यू सर. एक दो सेंटेंसेस रट सकते ना. बोला जरूर रटेंगे. अब रटने लगे हाउ आर यू हाउ आर यू. फर्स्ट टाइम इंग्लिश बोल रहे टेरिफिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस. हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू. As his motorcade was traveling towards the White House, how are you? How are you? How are you? He entered the White House. He saw the American president walking. How are you? How are you? और जैसे American president सामने पहुंचे हमारे Japanese president का stress level इतना बढ़ गया कि हमारे Japanese president instead of asking how are you पूछ बैठे who are you. American president ने कहा वाह मेरे अमेरिका में आके मेरे White House में आकर मुझसे पूछता who are you. तो उनको लगा मैं भी शायद मैंने इनको ठीक तरह सुना नहीं है. तो उन्होंने फेस लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज दिया कि आई डिडंट गेट यू प्रॉपरली. फेस लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज एनीबॉडी कैन गेट. द जापानीज पर्सन गॉट द क्लू शाउटेड एट हिज टॉप ऑफ हिज वॉइस हू आर यू. दैट वाज द लिमिट ऑफ इंडिसेंसी. एट दैट टाइम मिस्टर बिल क्लिंटन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. ही ऑल्सो शाउटेड एट हिज टॉप ऑफ हिज वॉइस आई एम द हस्बैंड ऑफ हिलरी क्लिंटन हू आर यू. एंड द जापानीज पर्सन रिप्लाइड सेम एज यू सर. और फ्रेंड्स बिलीव मी जो लोग यहां बैठकर जोरदार हंसे ना यू हैव डन ग्रेट सोशल सर्विस टू योर हार्ट. नॉर्मन कजिन्स एडिटर ऑफ द सैटरडे रिव्यू फॉर ओवर 35 इयर्स वाज डायग्नोस विद अ डिजीज जिसका कोई क्योर ही नहीं था. तो डॉक्टर्स ने कहा नॉर्मन आप जी ही नहीं सकते हो. तो नॉर्मन ने कहा डॉक्टर साहब अगर आप कहते हो मैं मरने ही वाला हूं तो क्यों ना हंसते हंसते मरूं. चेकड आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल घर गए एवरीडे वॉच कॉमेडी टॉम एंड जेरी चार्ली चैपलिन लॉरेल हार्डी हंसते रहे पता नहीं कब लास्ट क्षण आ जाए. He slowly recovered to full-time work. और नॉर्मन कजिन्स ने दो किताबें लिखी है Health in Your Hands, The Anatomy of an Illness and the Healing Heart. दो बुक The Anatomy of an Illness and the Healing Heart by Norman Cousins. और नॉर्मन कजिन्स कहते हैं It's no laughing matter, but laugh your way to health, wealth and happiness. एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार हंसता है और हम बड़े दिन में कितनी बार हंसते हैं. सर याद ही नहीं है सर इसके पहले कब हंसे. एंड थैंक्स टू दिस इन्विटेशन टू ज्ञान सरोवर यहां का थोड़ा हंस तो सकते हैं है ना. एंड दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट. हाँ लेकिन मैं फ्रेंड्स मैं जानता हूं कि ये जो जोक स्टोरीज इट इज जस्ट एज अ फर्स्ट एड मैकेनिज्म. लेकिन हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट कहता है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है दे आर ऑलवेज स्माइलिंग. हमारा ये रिसर्च प्रोजेक्ट कहता है. So can we change our blood group to B positive? कितने लोग हैं यहां जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है हाथ उठाइए. हाँ हमेशा मुस्कुराते रहते. यू अग्री विथ मी. हाँ यस यस यस. माई फ्रेंड फ्रॉम पंजाब तो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे. आई नो दैट. ओके अच्छा कितने लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं है वो हाथ उठाइए. हाँ फ्रेंड्स मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे यहीं पर माउंट आबू में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ग्लोबल हॉस्पिटल. तो अगर टाइम मिले ना तो वहां पर एडमिट हो जाना एंड चेंज योर ब्लड ग्रुप टू बी पॉजिटिव. और आप महसूस करेंगे जैसे ही आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो जाएगा तो सपने में भी आप मुस्कुराते रहेंगे. तो अगर टाइम होगा तो आप जरूर करना. एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय बी पॉजिटिव. हाँ नथिंग टू डू विद द ब्लड ग्रुप. इट मींस हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड है ना. तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं है वो राहत की सांस ले रहे हैं. हाँ थैंक्स स्वामी भाई भी थोड़ा मार्जिन बाकी है ना. और जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है उनके लिए तो सोने पे सुहागा. ये जो बच्ची है ना She is suffering from the last stage of cancer. लेकिन एक मुखौटा पहने हैं giving an indication. हम लोग तो perfectly normal हैं यार. अगर हम normal होकर भी वो खुशी का अनुभव नहीं कर सकते तो क्या है हमारे जीवन की quality? चेक करना. और मेरे अपने life में भी मैं बीच बीच में ना टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाता हूं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं और वो छोटे बच्चे मुझे इतनी wonderful ज्ञान दे देते हैं और उनसे देखकर मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि दिस स्मॉल किड सफरिंग फ्रॉम द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर अगर जीवन में इतनी खुशियां का अनुभव कर सकते हैं तो हे स्वामी तुम यार परफेक्टली नॉर्मल हो. यू डोंट हैव अ लाइसेंस टू बी सैड इवन फॉर अ सिंगल सेकंड. एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट क्वालिटी ऑफ विजन. अभी तक जो भी बताया इट कुड बी डिबेटेबल इट कुड बी कॉन्ट्रोवर्शियल. लेकिन अभी मैं आपको तीन परम सत्य बताने वाला हूं. फर्स्ट सत्य है कि हम इस संसार में आए हैं तो एक दिन हमको वापस जाना है. राइट right? बॉम्बे में ना लोगों को रिटर्न टिकट लेने की बहुत आदत होती है. बोरीवली रिटर्न दादर रिटर्न गोरेगांव रिटर्न. आप भी यहां माउंट आबू आए ना तो आपने रिटर्न टिकट जरूर कंफर्म की होगी. बहुत लोग जिनका रिटर्न टिकट कंफर्म नहीं होगा फोन करके बताते स्वामी आई कैन नॉट कम बिकॉज आर रिटर्न टिकट इज नॉट कंफर्म, है ना, जाने का कंफर्म है लेकिन आने का कंफर्म नहीं, इसलिए हम नहीं आते। लेकिन इस जीवन रूपी यात्रा में चलते चलते हम ये भूल जाते हैं कि हम सबके पास रिटर्न टिकट है, एक एक्सपायरी डेट है, एक दिन हमको वापस जाना है। दूसरा सत्य है हम अकेले आए हैं, अकेले हमें वापस जाना है। और तीसरा परम सत्य है खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। इस पर जरूर विचार करना। तो हम इस धरती पर आए हैं, हमें जाना है, आने और जाने वाली सत्ता कौन है वो तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। आप कौन हैं? आप एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा है। गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलती है, ड्राइवर उतरा तो गाड़ी रुक जाती है। उसी तरह ये शरीर भी एक बहुत सुंदर गाड़ी है जिसका ड्राइवर को हम कहते हैं आत्मा, सोल या रूह। और जब ये शरीर में प्रवेश करती है इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात इसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। इस शरीर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पोस्ट, पोजिशन, डेजिग्नेशन, सो मेनी थिंग्स। लेकिन इस आत्मा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अब जरूर जरूर विचार करना। एंड दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। द लास्ट स्लाइड, कैसे हमें क्वालिटी सर्कल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छी किताबें पढ़िए, तो एक दो किताब मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा। एक किताब आप जाते वक्त यहां से एक किताब जरूर लेकर जाना, एंड दैट इज ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, है ना, बहुत सुंदर जीवन कहानी। ये फाउंडर फादर जो हमारे इस विद्यालय के हैं, कैसे उन्होंने इस इतना वंडरफुल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, है ना, उनकी जीवन कहानी अब जरूर जरूर पढ़कर जाना। एंड उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इज आदिदेव ब्रह्मा, तो ये जरूर जरूर किताब पढ़ना। दूसरा आप एक कर सकते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहो, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा रंग लग जाता है। और तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, मेक गॉड योर क्वालिटी एडवाइजर, ईश्वर को अपने साथ हमेशा रखो। हमारे एक दुर्गा भाई जी हैं नेरुल में, ही वॉज अ फॉर्मल नेवल ऑफिसर, नेवल ऑफिसर। एक दिन हम उनकी गाड़ी में जा रहे थे, तो कार में वो सामने बैठे, मैं उनके साथ बैठा, पीछे तीन बहने थे, हम सेवा के लिए जा रहे थे। तो दुर्गा भाई जी ने मुझसे कहा स्वामी भाई चलें, हमने कहा चलो। बोला गिनो सब लोग पहुंच गए, हमने कहा 1 2 3 4 5, मैंने कहा पांच पहुंच गए। बोला फिर से गिनो कितने हैं, हमने कहा पांच। बोला स्वामी फिर से गिनो ना, मैंने कहा दुर्गा भाई पांच लोग पहुंच गए ना। तो मुस्कुराते उन्होंने हमसे कहा ईश्वर को साथ नहीं लेकर चलोगे। फिर पूछा कितने हैं, तब मैं इंटेलिजेंट हो गया, मैंने कहा अभी हम 6 जन हैं। बोला हां अभी गाड़ी चलाते हैं। तो जब आप 28 को यहां से निकलोगे ना फ्रेंड्स, आप अकेले नहीं जाना यहां से, किसको साथ रखोगे, हैं? और ये वंडरफुल ईश्वर है जिनका कोई टिकट कंफर्मेशन की भी जरूरत नहीं है, है ना, आपका रेलवे जो है उसके लिए टिकट भी नहीं मांगेगा, लेकिन इतना वंडरफुल एडवाइजर है। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक लास्ट कहानी बताकर मैं एंड करना चाहूंगा। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है, मैंने इस विद्यालय से कहानी सीखी। मेरे जीवन में कभी जब ऊपर नीचे मेरी मानसिक अवस्था की क्वालिटी होती ना, एक कहानी सुनता हूं और सुनाता हूं। इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टोरी। महाभारत के दृष्टांत में कहते हैं कि जब अर्जुन को सूर्यास्त के पहले जब जयद्रथ का वध करना था, है ना, दैट वाज अ कंडीशन कि अगर उसने सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध नहीं करेगा तो वो अपना गांडीव रख देगा और अपने जीवन को त्याग करेगा। तो एक दिन पहले शाम का वक्त था, श्री कृष्ण स्ट्रैटेजी सोचते हैं कि वो चक्रव्यूह को कैसे वेद करना है। और श्री कृष्ण को लगता था कि अर्जुन वुड बी इन अ टेरिफिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जाकर मैं उनको थोड़ा सांत्वना दूं। और जैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में जाते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि अर्जुन अपने बेड में लेटे हुए और खर्राटे मार के सो रहे हैं। माय गॉड, हाउ कैन अर्जुन स्लीप लाइक दिस। इमीडिएटली श्री कृष्ण अर्जुन को बुलाता है, हे अर्जुन उठ। अर्जुन उठता देखता श्री कृष्ण सामने खड़ा है। तो श्री कृष्ण पूछता है, अर्जुन तेरे को पता है कल सूर्यास्त के पहले तेरे को जयद्रथ का वध करना है? बोले यस मुझे पता है। फिर तू ऐसे खर्राटे मार के सो कैसे सकता है? एंड अ वेरी क्लासिक रिप्लाई ऑफ अर्जुन, जब वो जवाब देता है, जब भगवान मेरे लिए जागा हुआ है तो मैं सोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। गॉड इज अवेक फॉर मी, वॉट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। इसे कहते हैं सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों को बदलने की जरूरत है, सिर्फ दिशाएं बदलिए, मंजिल हमें जरूर मिल जाएंगे, मंजिल हमें जरूर मिल जाएंगे। एक लास्ट पीपीटी बताकर मैं एंड करूंगा। अगर आपको फिर भी वो दिशाएं नहीं मिल रहे ना, तो मैं एक अपने अच्छे दोस्त से लास्ट, इट जस्ट टेक वन मिनट, यस ब्रदर, हमारे हमने काफी बार ये बहुत अच्छा स्लोगन सुना है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर होते ना तो एक दिन पहले 10 न्यूज़पेपर्स का हॉरोस्कोप पढ़ते हैं राशिफल, कि एक तो हॉरोस्कोप मिलेगा जिसमें कहेगा कि तू पास हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। माय गुड फ्रेंड निक, इनका बचपन से दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। या निक के जो दूसरे भाई बहन है दे आर परफेक्टली नॉर्मल, लेकिन निक के साथ ऐसा क्यों हुआ? नो रीजन फॉर इट। नेक्स्ट, लेकिन निक उस स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन रूल कहता है कि हैंडीकैप स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, लेकिन इनके मम्मी डैडी बस एक ही कहते थे, माय निक इज परफेक्टली नॉर्मल, माय निक इज परफेक्टली नॉर्मल। दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन रूल एंड दे वन द केस एंड ही वॉज गिवन चांस टू स्टडी इन अ नॉर्मल स्कूल। और जिस दिन पहली बार जब निक उस स्कूल में गए तो बाकी सभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बैठे, धरना पर, कि हमें निक के साथ नहीं पढ़ना है क्योंकि निक हैंडीकैप्ड है। लेकिन निक ने उनके साथ बातें की और इतनी अच्छी बातें थी, इट वॉज अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, और उसका इफेक्ट क्या हुआ? वो बच्चे उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए, यहां तक कि वो उनके साथ खेलने भी लगे। निक लव्स टू मीट अदर हैंडीकैप पीपल, दूसरे अपाहिज बच्चों से भी उनको मिलना बहुत अच्छा लगता है। पीछे पीछे, जस्ट गो बैक वन। वन ऑफ फर्स्ट लेसन दैट आई हैव लर्न्ड वॉज नॉट टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। फ्रेंड्स, वी शुड नेवर टेक अवर लाइफ फॉर ग्रांटेड। निक इज अ मोटिवेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, एंड वी नो दैट इन ऑल थिंग्स God works for the best for those who love Him. Yes? He had complete peace knowing that God won't let anything happen to us in our life unless He has a good purpose for it all. Nick ko bache bahut pasand aate hain. I now see glory revealed as He is using me just the ways I am and in ways others can't be used. He's 21 years of age, completed a Bachelor of Commerce, majoring in Financial Planning and Accounting. He's also a speaker in the corporate sector. Nick ko bahut logon se milna bahut acha lagta hai. Yes? उनके भी बहुत सपने हैं और बहुत जल्द निक एक किताब लिखने वाला है। नो आर्म्स नो लेग्स नो वरीज, हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है, चिंताएं भी नहीं है, है ना। निक लव्स फोटोग्राफी एंड आगे बढ़िए, निक लव्स टू डांस ऑल्सो। बस होल्ड ऑन, अगर निक जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है अगर वो डांस कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए? हर पल हर क्षण वो उमंग और उत्साह के साथ डांस करना चाहिए। और आज जो मैं मेडिटेशन आपको कराऊंगा बस वो खुशी, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि हम बैठ कर उसका बस शांति का अनुभव करें, इट एक्चुअली गिव्स यू अ वेरी अति इंद्रिय आनंद। बस लास्ट टू मिनट्स यू कैन, हम अगर निक डांस कर सकते तो हम भी तो डांस कर सकते ना फ्रेंड्स। सभी खड़े हो जाइए, हम बहुत खुशी से डांस करेंगे, सभी करेंगे खुशी से। मैं पहले बोलूंगा फिर आप लोग वैसे क्या वैसे ही करना, ठीक है? चलिए, वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरा परिवार वाह, वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह, वाह ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट विंग वाह, वाह ज्ञान सरोवर वाह, वाह हमारे दीदिया दादिया वाह, वाह ये सेमिनार वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए अल्लाह। ओम शांति।
वाह स्वामी भाई वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सिखाया जिंदगी जीना किसे कहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है। अभी तो सब जीना सीख गए हैं और हमें लगता है एक साल तक भी यही रिपोर्ट आती रहेगी कि हमें अभी जीना आ गया है और समझ गए होंगे कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज होती है, क्वालिटी एनहांसिंग क्या चीज होती है। खुद को इम्प्रूव करना है, ना कि बाहर की बातों से हिम्मत हार जाना है। इसलिए हम समझ सकते हैं, आपके पूरे प्रवचन का सार है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब हमारे मध्य आज के आदरणीय चेयरपर्सन जी बैठे हैं और आपके कुछ आशीष वचन अप्रिसिएशंस हम लेना चाहेंगे। ब्रदर हेमंत मेहता जी, और आप बहुत वर्षों से विद्यालय के संपर्क में हैं और पिछले 2 वर्षों से अपने बोरीवली सेवा केंद्र बॉम्बे पर अपनी बहुत विशेष सेवाएं भी प्रदान की है। बाबा के इस कार्य से बहुत अंतर तक आप प्रभावित होते रहते हैं और आप एमएससी हैं मुंबई से और 92 में आपने एमएससी किया है और 90 से 2005 तक आप विधायक रहे हैं और अमरेली के 4 महाविद्यालयों के उपाध्यक्ष रहे हैं और अमरेली में ही टीबी हॉस्पिटल के अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ साथ एनसीपी नेशनल रिलीफ कमेटी के आप अध्यक्ष रहे हैं, एनसीपी और मुंबई के भी आप जिलाध्यक्ष रहे हैं। बहुत अच्छी गुड़ हिंदी लिखी है तो मुझे पढ़ने में थोड़ा जोर लग रहा है, भाई सबकी हिंदी बहुत अच्छी है। आज सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे भाई हैं, इस विद्यालय में पधारे हैं, इस समय हमारे मंच की शान है और आपके मुखारविंद से हम आज के विषय पर सुनेंगे आशीर्वचन। भ्राता हेमंत मेहता जी।
एनहेंसिंग क्वालिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के आज के इस कार्यक्रम में वास्तव में एवी स्वामीनाथन जी ने जिस प्रकार से एक अपनी शैली से, अपनी भाषा से, अपने शब्दों से एक मंत्र मुग्ध यहां के श्रोताओं को जो किया है, ज्ञान का प्रवाह दिया है, उसके बाद में मुझे क्या बोलना है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इस अवसर पर दीदी अनीता जी, सभी भ्राता बंधु बहन, वास्तव में संस्था से मेरा संपर्क बोरीवली में जब से केंद्र शुरू हुआ है तब से संस्था के साथ कहीं न कहीं कार्यक्रमों में हमें संस्था के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में ऊंचाई मिलती रही है और इसलिए संस्था का मैं सदैव ऋणी रहता हूं। कभी सामाजिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में काम करने के लिए लोग चाहते कि हमें कहीं प्लेटफॉर्म मिले और इस संस्था का प्लेटफॉर्म मिलना, संस्था की ओर से समाज के सामने हमें खड़ा करना और उसके कारण ही मैं समाज में आगे बढ़ने में यशस्वी रहा हूं, ऐसा मैं मानता हूं। सुबह दीदी जी ने कविता दीदी जी थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि पत्थर में से शिल्प बनाना, पत्थर के अंदर कहीं न कहीं कोई मूर्ति रही हुई होती है और ब्रह्मा कुमारी एक संस्थान की ओर से समाज के अंदर अलग अलग प्रकार की व्यक्तियों को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का, वैचारिक रूप से कोई आर्थिक संपन्न हो सकता है, कोई पद से संपन्न हो सकता है, मगर मानसिक तनाव युक्त जीवन में से मुक्त करवाना और उसे एक प्रेम का संदेश देने का, एक जो आज यहां बात की हेल्थ के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, स्वामीनाथ जी ने बहुत बताया, खास करके उन्होंने गुटखा, शराब, नॉनवेज, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, वास्तव में कोई कंपनी होती है, कंपनी में अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट होता है, कामगारों के ऊपर ध्यान देने वाला उसका यूनियन लीडर होता है, मगर सबसे बड़ी जवाबदारी इस कंपनी को मजबूत बनाने की किसकी, कंपनी को मजबूत बनाने की जवाबदारी किसकी रहेगी, परचेज ऑफिसर की। परचेज ऑफिसर कंपनी को लगने वाला माल किफायत दाम में अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल और कंपनी को जिस समय जितना आवश्यक है
जितना माल
आवश्यक है उतनी ही क्वांटिटी परचेज करता है, तभी वो कंपनी जो प्रोडक्ट करती है वो प्रोडक्शन क्वालिटी में और उसके रेट ऑफ कंपटीशन की दृष्टि से वो बाजार में टिकने में सफल होती है। मगर मेरे जैसा कोई सेल्समैन जाएगा, परचेजर को कहेगा यार आप कमीशन ले लो थोड़ा, मेरा माल थोड़ा खराब होगा, क्वांटिटी ज्यादा ले लो, क्वांटिटी ज्यादा ले लेंगे क्वालिटी खराब ले लेंगे, रॉ मटेरियल गोदाम में माल पड़ा रहेगा, कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, माल का डैमेज होता है, माल खराब होते हैं और कंपनी उसके कारण कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऊपर जाती है और क्वालिटी खराब होती है। तब एक परचेज ऑफिसर इस प्रकार का जब लंबा समय चलाते हैं तब वो यूनिट सीक यूनिट बनता है। और सीक यूनिट को क्या क्या करा जाता है, ऑक्शन किया जाता है, निकाल दिया जाता है। हमारे शरीर में भी उसी प्रकार हमारी जीभ ये परचेज ऑफिसर है। हमारे स्वाद के लिए हमें लगता है बहुत टेस्टी है, गुलाब जामुन है, पेड़े है, बर्फी है, उन हमारे टेस्ट के लिए हम पेट में डाल देते हैं, पेट को जरूरत है नहीं दे उसका हम देखते नहीं है। जबान को, जीभ को, रसना जिसको कहते हैं, उसका कमीशन है टेस्ट, और वो टेस्ट के कारण हमारा शरीर भी आखिर में एक दिन सीक यूनिट बनता है। और ये सीक यूनिट नहीं बनाना, उसके लिए सबसे पहले यहां एक बहुत बड़ा यानी किसी भी प्रकार के व्यसन से मुक्त होना, ये सबसे बड़ी यहां का अर्थ का संदेश है। दीदी जी ने जो कहा और स्वामीनाथन जी ने जो अलग अलग बात रखी है बच्चों के बारे में, जीवन के बारे में, हम जीवन में यहां दिखाई दिए कि कितने शरीर से कहीं ना कहीं अपंग है। भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कि हमें संपूर्ण रूप से शरीर दिए हैं। ईश्वर ने हमें क्या दिया यदि हम पूछेंगे कोई, तो सुबह से उठिए, सुबह पक्षी कलरव करते हैं, शोर करते हैं, सूर्य आते हैं, कहीं किसी का रुपया नहीं देना पड़ता, पक्षियों की आवाज सुमधुर संगीत मिलता है, सूर्य की किरणें हमारे जीवन को बख्शते हैं। तो इस प्रकार की यदि हम नेगेटिव भूमिका में न जाते हुए पॉजिटिव भूमिका में जाकर अपने जीवन को किस प्रकार से आगे लेके जाना, जीवन में हम समाज में हम किस प्रकार से लोगों को उपयोगी होना, एप्रिशिएट के बारे में उन्होंने पति पत्नी का उदाहरण दिया, मैं छोटे बच्चों का कहूंगा, हमारे परिवार में बच्चे स्कूल में जाते हैं, विविध स्पर्धाएं में भाग लेते हैं, बच्चा जब कोई इनाम बख्शीश सर्टिफिकेट वगैरह लेके आते तब घर पे आके सीधा जाएगा अपनी मां के पास, मां मां मुझे ये बख्शीश मिले, मुझे इनाम मिला, ये पारितोष मिला मुझे, तब हम उसके प्रति उपेक्षा करेंगे तो बच्चा भी नाराज होता है, उसको लगता है मैंने परिश्रम किया, मैंने मेहनत की, मगर मेरे मेहनत के ऊपर कोई यदि जवाब नहीं दे सकता, उसकी नोंद नहीं ले सकता, मेरी मां भी उसके लिए ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती, मुझे शाबाशी नहीं दे सकती है, उसी प्रकार पति पत्नी का कहा, तो बच्चा भी आखिर में पढ़ाई में अपने जीवन में पीछे रहने के लिए उसके एक मानसिकता बन जाती है कि मैं कुछ मेहनत करने के बाद में भी मुझे कोई श्रेय देने वाला नहीं है। उन्होंने कहा पत्नी पूरा दिन काम करती है और पति शाम को आकर बुआ बूम करते हैं, पत्नी भी नाराज हो जाती है कि मैं क्या करूं। इसी प्रकार के जीवन के हर पहलू पे विद्यार्थियों की दृष्टि से भी एक प्रकार का संदेश, जीवन का हर क्षेत्र का एक प्रशंसा करना, और सबसे महत्व की बात गुस्से के ऊपर काबू मुझे सबसे पहले ये लेना पड़ेगा जीवन में, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर यहां का एक माहौल वातावरण, यहां का सब चीज जो देखा, हर कदम पर दिमाग इतना चला जाता है हर समय पर, मगर मैं निश्चित रूप से एक आज यहां का जो आने का अवसर प्राप्त हुआ, जीवन में हंसना, दूसरे के साथ किस प्रकार से प्रेजेंटेशन हमारा होना चाहिए, किस प्रकार से हम उसके सामने आना चाहिए, इस प्रकार की सब बातें स्वामीनाथन जी ने बताइए। मैं तो यहां इतना जरूर उनसे एक वादा देता हूं और वचन लेता भी हूं कि बोरीवली अपने उत्तर मुंबई क्षेत्र में निश्चित रूप से आपके इस प्रकार के प्रवचन के वर्ग, ये हमारे आने वाली नई पीढ़ी के लिए, आने वाले युवकों के लिए, बुजुर्ग समय उसकी जिंदगी का साल कम है, मगर जो आने वाली नई पीढ़ी है उसके लिए एक प्रकार के बौद्धिक रूप से, एक शिक्षा के रूप से, बिना किसी प्रकार के खर्च किए एक ने अपने जीवन को प्रफुल्लित, आनंदित और व्यसन मुक्त करके अपना पारिवारिक एक आनंद और उल्लास प्राप्त करने के लिए आपने एक जो आज बोध दिया है, जो भी माध्यम है मगर जीवन की ऊंचाई को लेके जाने वाला इस प्रकार का ब्रह्मा कुमारी का ये केंद्र की ओर से अलग अलग प्रकार के विषयों के ऊपर जो बात हुई है, मैं इससे प्रभावित, यानी यहां का वातावरण भी किस प्रकार का है, हम सब चीज भूल जाते हैं। कभी अपने घर में मैं यहां की कुछ बातें गले कर, शायद आपको इसे लगे, हमारे घर में भी टॉयलेट हम कितना साफ रख सकते हैं, मोरी कितनी साफ रख सकते हैं, जहां स्वच्छता होगी, सफाई होगी, वहां ईश्वर का वास होता है। और इस प्रकार का यहां वातावरण, माहौल एक ईश्वरमयी वातावरण बनाने का ये केंद्र के माध्यम से ये प्रयास है, उसके अंदर हम सहभागी होकर इसमें अपना योगदान दे, यही शुभेच्छा शुभकामना मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आप सबको और आप सब लोगों ने सुना, इसलिए आपका सबका धन्यवाद। हरिओम, ओम शांति।
मेहता जी, तहे दिल से शुक्रिया, आपने जिंदा दिली से सबके अंदर सुंदर जोश भरा है, और ये जोश सबका, हमें विश्वास है, कायम रहेगा। क्वालिटी एनहांसिंग के बारे में सुना, सबको बहुत अच्छा लगा, सब कहेंगे करना चाहिए, जी हाँ करना चाहिए, करें।